नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत, इस पर बात करेंगे
जी।
और इसमें भी एक खास अध्याय है, तपश्चर्या आत्मशक्ति के उद्भव हेतु अनिवार्य।
हाँ, ये बहुत ही गहरा विषय है।
बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि पूज्य गुरुदेव के नजरिए को समझें कि ये तपश्चर्या आखिर आत्मिक शक्ति के लिए इतनी जरूरी क्यों है और इसका असली रूप है क्या।
हाँ, क्योंकि तपश्चर्या को लेकर कई बार थोड़ी मतलब गलत फहमियां भी होती हैं।
सही कहा। तो चलिए इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। पूज्य गुरुदेव साफ कहते हैं कि तपश्चर्या सिर्फ पूजा पाठ या कोई कर्मकांड भर नहीं है।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे व्यक्तित्व को तपाने की, उसे निखारने की, मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया मानते थे, एक तरह से खुद को रिफाइन करने का तरीका।
जैसे कोई धातु तपकर कुंदन बनती है।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, पूज्य गुरुदेव ने इसमें श्री अरविंद का उदाहरण भी दिया है।
हाँ, वो मैंने पढ़ा। जब स्वतंत्रता संग्राम में उनके बाहरी प्रयास उतने कारगर नहीं हुए तो वो पांडिचेरी चले गए एकांत तपस्या में।
जी, और बाहर से देखने पर जैसा आपने कहा, ये शायद पलायन लग सकता था, है ना?
बिल्कुल। लेकिन पूज्य गुरुदेव इसे
वो इसे पलायन नहीं मानते थे। उनके अनुसार ये एक तरह का शक्ति संचय था, एक रणनीतिक कदम।
शक्ति संचय कैसे?
उनका मानना था कि इस गहरी तपस्या से एक इतनी शक्तिशाली अदृश्य ऊर्जा पैदा हुई जिसने देश के, आप कह सकती हैं, वैचारिक माहौल को बदला।
अच्छा।
हाँ, और उस ऊर्जा ने ऐसी परिस्थितियां बनाई जिनसे कई महान विभूतियों का उदय हुआ। ये कुछ ऐसा था जो शायद उस वक्त सिर्फ राजनीतिक कोशिशों से संभव नहीं था।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है।
जी, इसी तरह व्यास जी का भी उदाहरण है। महाभारत और इतने सारे पुराण लिखने के लिए उन्होंने एकांतवास और मौन का तप चुना,
ताकि एकाग्रता सध सके।
बिल्कुल, पूरी तरह से फोकस।
तो फिर तपस्या का असली स्वरूप क्या हुआ? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ मंत्र गिनना है या व्रत रखना?
नहीं नहीं, पूज्य गुरुदेव इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये कोई मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं है। सिर्फ माला फेरना या भूखे रह लेना ही तप नहीं है।
तो फिर क्या है?
जब तक उसके साथ कठोर अनुशासन और व्रत पालन ना जुड़ा हो। तपश्चर्या, वो कहते हैं, हमारे तीनों शरीरों को, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों को तपाकर निर्मल और समर्थ बनाती है।
तीनों शरीरों को, स्थूल, सूक्ष्म और कारण।
हाँ, जैसे कच्ची धातु होती है ना, भट्टी में तपकर शुद्ध होती है, उपयोगी बनती है, वैसे ही तप की भट्टी हमारे अंदर के जो कषाय कलमश है, जो कमजोरियां हैं, उनको जला देती है।
अच्छा, तो ये एक तरह की आंतरिक शुद्धि और क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया है।
एकदम सही। और पूज्य गुरुदेव ने इसके दो मूल सिद्धांत बताए हैं, बड़े सरल है, संयम और सदुपयोग।
संयम और सदुपयोग, ये कैसे काम करते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए।
देखिए, संयम का मतलब सिर्फ रोकना नहीं है, ये एक तरह का एनर्जी मैनेजमेंट है। इसमें चार मुख्य संयम है।
चार? कौन कौन से?
पहला, इंद्रिय संयम, मतलब अपनी इंद्रियों पर, जैसे स्वाद वगैरह पर कंट्रोल रखना, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
ठीक है।
दूसरा, ब्रह्मचर्य, वीर्य रक्षा से मनोबल बढ़ता है। तीसरा, अर्थ संयम।
अर्थ संयम मतलब पैसों का संयम।
हाँ, ईमानदारी से कमाना और एक औसम भारतीय की तरह सादा जीवन जीना, फिजूल खर्ची से बचना। और चौथा, समय संयम।
समय संयम, हर पल का सदुपयोग।
बिल्कुल, एक क्षण भी बेकार न जाए, अच्छे कामों में लगे। और इसी से जुड़ा है विचार संयम भी, मन को भटकने से रोकना, एकाग्र करना।
तो संयम से हमने अपनी ऊर्जा बचाई, अपने संसाधन बचाए।
हाँ, और यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, सदुपयोग।
सदुपयोग,
जो शक्ति, समय, धन, विचार शक्ति हमने संयम से बचाई, उसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए, मतलब महान उद्देश्यों के लिए लगाना,
लोक कल्याण के लिए।
जी, लोक कल्याण और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अपनी बचाई हुई ऊर्जा को सही दिशा देना ही तपश्चर्या का पूरा स्वरूप है।
तो ये सिर्फ व्यक्तिगत शुद्धि नहीं बल्कि इसका एक सामाजिक पहलू भी है।
बिल्कुल, ये व्यक्तिगत शुद्धि से शुरू होकर समाज के लिए योगदान तक जाता है।
संयम से बचाया, सदुपयोग से सही दिशा दी, लेकिन इस सारी आत्मशक्ति और ऊर्जा का आखिर लक्ष्य क्या है? मतलब पूज्य गुरुदेव इसे किस बड़े संदर्भ में देखते थे?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, पूज्य गुरुदेव का मानना था कि जो दुनिया के बड़े काम हैं, बड़े संकटों को टालना हो या मान लीजिए एक नए बेहतर युग का ताना बाना बुनना हो,
नवयुग का निर्माण,
हाँ, तो ये काम सिर्फ हमारे इस स्थूल शरीर के बस का नहीं है, इसकी अपनी सीमाएं हैं।
ठीक है।
इन बड़े कामों के लिए हमें विकसित सूक्ष्म और कारण शरीर चाहिए और वो तब से ही संभव है।
सूक्ष्म और कारण शरीर,
जी, वो रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देते हैं, कैसे उन्होंने अपनी शक्ति विवेकानंद को सौंपी और खुद सूक्ष्म शरीर से कहीं ज्यादा व्यापक काम किया।
हाँ, ये सुना है।
कहते हैं ईसा मसीह ने भी जब स्थूल शरीर की सीमाएं देखी तो सूक्ष्म जगत से अपने कार्य का विस्तार किया।
अच्छा।
कई बार जो महान आत्माओं का हम कष्ट भरा अंत या बलिदान देखते हैं,
हाँ,
वो भी असल में इसी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है।
अच्छा।
स्थूल शरीर की सीमा से निकलकर सूक्ष्म जगत में ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने का एक तरीका।
अच्छा।
तो मतलब तपस्या कोई निष्क्रियता या दुनिया से भागना नहीं है?
बिल्कुल भी नहीं।
ये तो आत्मशक्ति जगाने की, खुद को तराशने की और फिर सूक्ष्म स्तर पर जाकर विश्व कल्याण जैसे बड़े लक्ष्यों को साधने की एक बहुत ही सक्रिय, एक गहन आंतरिक प्रक्रिया है।
तो ये अपनी सीमाओं से ऊपर उठने का रास्ता है।
हाँ, अपनी भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी असली क्षमता को जगाना और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान देना, तब एक तरह से बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करके उसे ऊंचे लक्ष्यों में लगाने का विज्ञान है।
ये तो बहुत ही प्रेरणादायक विचार है
जी, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है।
किस बारे में?
कि आज के दौर में हम सब अपने अपने जीवन में, चाहे छोटे स्तर पर ही सही, ये संयम और सदुपयोग के सिद्धांत कैसे अपना सकते हैं,
ताकि हम भी अपनी आंतरिक शक्ति जगा सकें।
हाँ, और अपने आसपास, अपने समाज के लिए पहले से कुछ ज्यादा सकारात्मक, कुछ ज्यादा प्रभावी योगदान दे सकें। ये एक विचारणीय प्रश्न है।